Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Svetashvatara Upanishad ke Swadhyaya mein मंत्र 15वां तिलेषु तैलं ददनीव सर्पी रापः स्रोतः स्वर्णेषु चाग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यते असौ सत्तेनैनं तपसा यो नु पश्यति तिलेषु तैलं ददनीव सर्पी रापः स्रोतः स्वर्णेषु चाग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यते असौ सत्तेनैनं तपसा यो नु पश्यति तिलेषु तैलं ददनीव सर्पी रापः स्रोतः स्वर्णेषु चाग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यते असौ सत्तेनैनं तपसा यो नु पश्यति. हाँ, तो अरणि मंथन की बात चल रही है. जैसे लकड़ी में अग्नि दिखती नहीं है, अदृश्य है, फिर भी उसका लिंग नाश नहीं है, यानी स्वरूप से लकड़ी में स्वरूप से अग्नि का अभाव नहीं है, यानी स्वरूप से उसकी उपस्थिति है. तो फिर दिखती क्यों नहीं है? देखने के लिए उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा. वो यह, दोनों लकड़ी में अग्नि स्वरूप से है, दोनों का संघर्षण करो, अरणि मंथन करो, तो फिर वहीं से वह प्रकट हो जाएगी, दिखने लग जाएगा. इसी तरह सर्वव्यापी आत्मा तुम्हारे अंतःकरण में है और प्रणव में भी है, शरीर में भी है और प्रणव में भी है, लेकिन अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? अव्यक्त है, उसको व्यक्त करना पड़ेगा. देखने के लिए, अनुभव करने के लिए उसको व्यक्त करना पड़ेगा. कैसे किया जाए व्यक्त उसको? प्रणव और शरीर दोनों के बीच में अंतःकरण के द्वारा ध्यान निर्मथनाभ्यासात, नित्य निरंतर सतत अप्रमादी होकर ध्यान का निर्मंथन अरणि मंथन करोगे, प्रणव और शरीर के आत्मा के मंथन पर उसी हृदय में वह व्यक्त हो जाएगा और अपरोक्ष हो जाएगा. इस बात को समझाने के लिए अन्य उदाहरण दे रहे हैं. तिलेषु तैलम, हम लोग तेल बोलते हैं ना, वस्तु में केवल तिल का तेल ही होता है, और का तेल नहीं होता. तो आप सरसों का भी तेल बोल देते हो, सरसों का तेल नहीं होता है, सारसप होता है, सरसों तेल नहीं होता है, सरसों मूंगफली का भी तेल नहीं होगा। क्योंकि यौगिक अर्थ है ना तेल। तेल किसको कहते हैं? तिल के कार्यों को तेल कहते हैं। तेल कहने का इतना ही प्रयोजन है। लेकिन जो तेल तिल के कार्य रूप तेल को तेल कहा गया था, उसी सादृश्य होने के कारण मूंगफली का भी कार्य को तेल कह दिया, सरसों के कार्य को भी तेल कह दिया, तो यौगिक अर्थ को रूढ़ी में ले गए। तो यदि तुम सरसों को तेल कहते हो, वो सरसों को तेल होने के कारण सरसों को तेल नहीं कहा है, समझे नहीं? वो सरसों को तेल कहने में यौगिक अर्थ माने रूढ़ी अर्थ है। सरसों के तेल रूढ़ी अर्थ है, तिल के तेल यौगिक अर्थ है। बात समझ गए कि नहीं? सही रूप में तेल तो तिल का ही है, उसको यहां कहते हैं ना तिलेसु तैलम। तिलेसु तैलम वास्तव में तैलब अपभ्रंश होकर तेल बन गया है, उसका नाम है तैल। क्या कहोगे उसको? तैल। बाजार में जाकर यदि कहोगे तैल दे दो तो कोई नहीं समझेगा। तैल माने तिल का जो कार्य है, तिल से उत्पन्न हुआ, तिल से व्यक्त हुआ। तिल में तेल रहता है कि नहीं? तिल में तेल पहले से ही रहता है। रहता है तो दिखता क्यों नहीं? नहीं दिखेगा। जब तक उसको मशीन में डालकर निचोड़ोगे नहीं, किसको? तिल को। जब तक तिल को मशीन में डालकर निचोड़ोगे नहीं, पहले तो हाथ के कोलू हुआ करते थे। हमने बचपन में देखा पहाड़ों में, गांव में, तो एक बड़ा पत्थर होता था, उसमें छेद किया जाता था और बड़ा लकड़ी का एक बनाते थे और उसमें डालते थे, उसमें घान डाला तिल और उसको घुमाया तो वो तेल निकलता था, निचोड़ता था वो कोलू, कोलू बोलते थे उसको, तब निचोड़ जाता था। तब आजकल तो नया टेक्निक आ गया है, टेक्नोलॉजी, तब मिल हो गया। अब आजकल तो बिना पेले भी, बिना निचोड़े भी तेल निकाल लेते वैक्यूम से। ऐसा यंत्र बन गया है, पूरा तेल को उसमें डाल दो मशीन में, वो दाने को बिल्कुल छुएगा नहीं, वो मशीन तिल में खरोंच तक नहीं आएगा, जरा सा छिलका भी उसमें खरोंच नहीं आएगा, लेकिन तेल पूरा खींच लेगा। बाद में उधर से तेल तिल जैसा का वैसे निकलेगा। हाँ, तिल वैसे ही निकलेगा, तेल सब खाली हो चुका होता है और तिल जैसा का वैसा निकलेगा, कहीं खरोंच भी नहीं आएगा, लेकिन तेल नहीं है उसमें। हाँ, ये तुम्हारे जितने भी बादाम जो आते हैं आजकल, सब रोगन निकाला हुआ आते हैं बादाम में से। आजकल तो बाजार में जो मूंगफली आ रहे, सब तेल निकाला हुआ मूंगफली आ जाता है। जो सिंगदाना है, हाँ, वो डाल देते हैं मशीन में, तेल खींच लेते हैं और दाना बाहर जैसा का वैसे दाना, जितना निकालते निकाल लेते हैं। हर चीज में से निकालते हैं बाबा, तो बाल से खाल निकालते हैं लोग तो बाल के खाल निकालते हैं लोग, बाल का खाल देखा है ना? मोची कसाई भैंस का खाल निकालते हुए तो देखा था, बाल के खाल निकालते हुए नहीं देखा था। अभी तो बाल के भी खाल निकालेंगे। या मायायाम सर्वसंभव है भाई, कुछ भी असंभव नहीं है। अरे भाई, यहां तक कि डॉक्टर लोग, डॉक्टर मजुमदार जी बैठे हैं, उनका सब्जेक्ट है वो, अन्यथा न लें। ऐसा ऐसा माने गैंग तैयार हुआ है डॉक्टरों का। बेचारे गांव के गरीब पेट दुखा करके आते हैं और ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा तो अच्छा ऑपरेशन करो, हम फ्री करा देंगे। फ्री कराएगा मूर्ख, वो फ्री कराएगा? एक किडनी निकाल दिया, खत्म। उसको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है ठीक हो गया। अब वो किडनी, उसको कई लाखों में किडनी बेच दिएगा और उसको कहा कि हम तेरा ऑपरेशन फ्री कर देंगे, देख लो तो बेचारा। अरे जीवन रहते रहते किडनी निकाल लेते हैं, समाज तो कहां पहुंच गया है। बेचारा अन्ना हजारे कब तक सफल होंगे, रामदेव कितने सफल होंगे। हाँ, कुएं में भांग पड़ गया है तो अब क्या करोगे, जो उसका पानी पिएगा वो सब सब को चढ़ेगा, तो वही तो और क्या। तो ये तो यही हो रहा है। तो तिलेश तैलम, तिल में तेल पहले से ही विद्यमान रहता है लेकिन दिखता नहीं, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब तिल तेल का लिंग नाश नहीं है, तेल है नहीं, नहीं बचा लिंग नाश, पहले कहा है ना। दधनीव सर्पी, अब आजकल तो दही होता है सर्पी नहीं होती है, क्योंकि सपरेटा दूध पहले सर्पी दूध में से ही क्रीम निकाल लेते हैं, सपरेटा दूध बोलते हैं ना, क्रीम फैट निकाल लेते हैं पहले से ही, मशीन में डाल दिया सब दूध में से क्रीम निकल गया। अब दूध जो का तुम बाजार में है उस दूध को किन के खरीद के ले आओ, दही बढ़िया बन जाएगा। दूध से जो बननी थी दही, दही तो बन जाएगा लेकिन मथो तो मक्खन नहीं है। हाँ, दधनी, दधिनी माने दही, सर्पी दहियों में घी, दिखता नहीं है। आपह स्रोता, स्रोत माने जमीन के अंदर जो पानी का स्रोत रहता है, तो खोदने पर दिखेगा। जब तक नहीं खोदोगे तो नीचे, वनस्पतियों को पता है कि पानी नीचे है लेकिन हमको नहीं दिखेगा, लेकिन खोदेंगे तो पता चलेगा। आपह स्रोतः, स्रोतःसु अरणिषु, अरणिषु चाग्नि, लकड़ी में अग्नि पहले से है तो मंथन किए बिना नहीं दिखेगा। एवं ये चार दृष्टांत दिया, तिल में तेल, दही में घी, स्रोत में जमीन के नीचे पानी और लकड़ी में अग्नि। जैसे पहले से हैं दिखता नहीं, लेकिन पेलने पर तेल दिखेगा, मथने पर घी दिखेगा, खोदने पर जल दिखेगा और मंथन करने से, अरणि मंथन से अग्नि दिखेगा। एवं आत्मानम आत्मनि, आत्मनि अंतकरण, आत्मानम इसी तरह अंतकरण में आत्मा पहले से ही विद्यमान है, दिखता क्यों नहीं है। सत्येन तपसा यो अनुपश्यति, तो सत्य और तपस्या के द्वारा है उसको प्रकट करके अनुभव किया जा सकता है। पहले ध्यान निर्मथन कहा था, अब यह सत्य और तपस्या को अव्यक्त आत्मा को व्यक्त करने के साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। है? सत्येन एनम आत्मानम, सत्येन एनम आत्मानम, सत्येन तपसा एनम आत्मानम अनुपश्यन्ति, अनुपश्यति सत्येन, सत्यस्य, सत्य माने यथार्थ कथन, सत्यवादी सत्यवादी, सत्यवादी सबसे जीवन में तो खतरनाक तो यही हो रहा है, बोलने में ही डुप्लीकेट है, व्यक्ति बोलता ही डुप्लीकेट है, क्या करेंगे? तब क्या मिलेगा? जब वस्तु सत्य नहीं मिलता, ओरिजिनल नहीं मिलता है, तो आत्मा मिल जाएगा? अभी तो आत्मा भी डुप्लीकेट बनाना शुरू कर चुके हैं, मजा लगता है किस दिन वो डुप्लीकेट आत्मा आ जाएगा, है? आत्मा ही डुप्लीकेट हो जाएगा। अभी तो ब्लड तो डुप्लीकेट बना चुके हैं ना, सिंथेटिक ब्लड बना चुके हैं शायद, है? क्या क्लोन? हाँ, सिंथेटिक सही नहीं, वो अलग चीज है, ब्लड बना चुके हैं सिंथेटिक। हाँ, हम मीडिया में आया था बहुत पहले, सिंथेटिक ब्लड, डुप्लीकेट ब्लड, रक्त नहीं, बना तो दिया है उन्होंने, अब काम में आ रहा है नहीं आ रहा है भगवान जाने, हो सकता है वो आ भी जाए, क्योंकि लेबोरेटरी में ऐसा उसमें से ब्लड के कोई जीन्स को ले जाए और वो कृत्रिम ब्लड तैयार करे और एक जीन्स ले जाके छोड़ दें, वो अपने डेवलप तुरंत डेवलप कर ले, वो कर सकते हैं, अब वैज्ञानिक लगा हुआ है, कुछ न कुछ कर देंगे वो, सब डुप्लीकेट। तो सत्य ने एनम तपसा यो अनुपस्यति, बात से देख लो भाई, तिले स्वीति यंत्र पीड़नेन तैलम गृह्यते, तिल में तेल पहले से है, दिखता नहीं, न दृश्यते, परंतु यंत्र पीड़नेन, यंत्र के द्वारा उस तिल को पीड़ा पहुंचाओ पीड़ा पहुंचाओ माने पीड़ित करो उसको, ऐसा पीड़ित करो, दबाओ है, तो उसको पीड़ित करोगे तो क्या निकलेगा? तेल निकलेगा। तेल को पीड़ित करोगे तो तेल निकलेगा, और तुम्हारे शरीर को पीड़ित करेंगे तो क्या निकलेगा? हैं? खून निकलेगा, आत्मा निकलेगा, स्वाभाविक ही है। अभी इसके अंदर जो आत्मा है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, शरीर को यदि पीड़ित करने लग जाएंगे, पेलने लग जाएंगे, आत्मा निकल के चला जाएगा, है? तिल से तेल निकल जाए तो फिर वो तिल क्या होगा? खली बोलते हैं, नहीं खली बोलते हैं, पीना खली। तो इसी प्रकार से आत्मा निकल जाए, शरीर को पीड़ित करोगे तो आत्मा निकल जाएगा, तो क्या रहेगा? ये खली रहेगा, ये शरीर जो खली रहेगा वो जाहिर से जला दोगे, वही तो खली है, लेकिन वो दिखेगा नहीं। तिल पीड़ित होगा तो तेल दिखेगा, शरीर पीड़ित होगा तो निकलेगा तो आत्मा, लेकिन दिखेगा नहीं। यहां कहते हैं दिखेगा, लेकिन शरीर को पीड़ा करने का मतलब क्या है? तपसा सत्येन, यही है आत्मा प्रकट करके देखने की उपाय, यही है कि सत्य और तपस्या, या पहले श्लोक मंत्र के द्वारा अरण्य मंथन यानी ध्यान निर्मंथन। तो तिलेषु इति यंत्र पीड़नेन तैलम गृह्यते, इसी तरह दधनी मथनेन सर्पीरपि गृह्यते, गृह्यते का ऊपर से अध्ययन कर लेना, तो दही में घी पहले से विद्यमान है, दिखता नहीं, लेकिन दधी को मंथन करोगे तो वो घी प्रकट हो जाएगा। आपस्रोतासु नदीसु भूखननेन आपगृह्यते, आप लोगों में से बोध गया, गया गए हो कि नहीं? गया जी जाते हैं ना पिंडदान करने के लिए, पित्री के लिए श्राद्ध करने के लिए, हाँ, ज्येष्ठ पुत्र पिता के लिए, पितरों के लिए सबसे पहले गया जाकर पिंडदान करे, उसके बाद बद्र जाकर ब्रह्म कपाली करे। पहले बद्री नहीं, पहले गया, उसके बाद दूसरे नंबर में बद्री। नहीं मानते पंडित लोग, नहीं मानेंगे बद्री के पंडित, नहीं माने ब्रह्म कपाली। श्राद्ध करा देंगे, ब्रह्म कपाली नहीं कराएंगे, पिंड दिला देंगे, ब्रह्म कपाली जो है विधि वो नहीं कराएंगे। गया गए बिना ब्रह्म कपाली नहीं करते। तो ब्रह्म कपाली कर लेने के बाद फिर पिंड देना नहीं पड़ता है। बद्री जाकर तुमने ब्रह्म कपाली कर ली, फिर उसके बाद हर वर्ष तिथि में पिंडदान देना नहीं पड़ेगा। तर्पण कर दो, बात अलग चीज है, पिंड देने की जरूरत नहीं है। इसलिए हर साल पिंड देने के झंझट से यदि मुक्त होना चाहते हो तो जल्दी पहले गया जाओ, गया श्राद्ध करो, उसके बाद बद्री जाकर ब्रह्म कपाली कर दो। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, बेटा जाना ही पड़ेगा, परिवार का फैमिली मेंबर जो हेड सीनियर है वो जाना पड़ता है। हाँ, बड़ा न हो तो, शास्त्र का नियम तो ये है, उसका बड़ा भाई है तो छोटे भाई को अधिकार नहीं। हाँ, तो आजकल तो पिंडी नहीं करते तो भी ठीक चलता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, बड़ा जो होता है वो जाएगा अपने बाप, वो भी बाप होगा तो नहीं कर पाएगा, जिसके बाप हैं वो श्राद्ध नहीं कर सकता। हाँ, और वो अपने कुटुंब का ही करेगा, अपने कुटुंब का जो वहां जाएगा तो वहां तो वो तो पूरे को तीन पीढ़ी को तो तर्पण करना ही पड़ेगा, पिंड देना ही पड़ता है उसको। तो ग्रीष्म अवस्था में, ग्रीष्म काल में गया जाओ पिंडदान देने के लिए, नदी में पानी है ही नहीं, और फल्गु नदी है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, किसी भी गया में तिथि नहीं चाहिए, किसी भी तिथि में जाओ, तीर्थ है इसीलिए तीर्थ में तिथि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गया जाओ, गया में पिंड करना चाहिए बस। हाँ, तिथि छोड़ दो, तिथि की जरूरत नहीं है, तुम जब पहुंच गए तब कर लो, एक बार करना चाहिए। गया गया किए बिना बद्री नहीं की जाती, ब्रह्म कपाली नहीं करते। नियम तो और एक और जोड़ते हैं, गोकर्ण, गया और बद्री। पहले गोकर्ण, दूसरे नंबर में गया, तीसरे नंबर में बद्री। हाँ, गोकर्ण, गोकर्णेश्वर महादेव दक्षिण भारत में है, और यहां उत्तर प्रदेश में भी गोकर्ण तीर्थ है, ये सीतापुर और इसके पास में पड़ता है, गोकर्ण बहुत बड़ा है, और नेपाल में भी गोकर्ण है। तो जगह जगह गोकर्ण तीर्थ बना रखा है सुविधा के अनुसार। हाँ, तो हम कह रहे थे क्या, पानी कहीं नहीं दिखता है, लेकिन वही जब नदी के बालू खोद लेते हाथ से, तब जब वो जैसे हाथ से बालू को हटाओ, खोदते जाओ तो एक डेढ़ फुट नीचे बालुआ हाथ से, हाथ ही से, क्योंकि बालू ही बालुआ है, वहां कोई औजार नहीं चाहिए, हथियार नहीं चाहिए। हाँ, तो बस उसको करते करते पानी सब निकल आएगा, वही पानी निकालते हैं, उसी से तर्पण पिंड करते हैं। हाँ, और फिर उसी गड्ढे में पिंड डाल देते हैं, बालुआ डाल देते हैं, क्योंकि पानी तो है ही नहीं बगा देने के लिए। आपा स्रोत सुह, नदी सुह, भू खनने न आपा गृहते, ये गृहते का सब जगह अन्वय करते जाना। आपा माने जल, आपा माने जल, वही हो गया ना, भू खनने न स्रोतेषु नदीसु आपा गृहते, अरणिषु चाग्नि केन गृहते मथनेन, अरण ही में विद्यमान जो अग्नि है उसको मंथन के द्वारा अग्निर्गृहते, गृहते का अध्ययन करते जाओ। एवं इसी तरह आत्मानम, आत्मा आत्मनि स्वात्मनि अपने ही अंतकरण में विद्यमान जो आत्मा है वह गृह्यते असौ केन केन साधनेन गृह्यते मननेन